नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। दिल्ली पुलिस ने 2008 में दिल्ली के बटला हाउस मुठभेड़ में वांछित इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिफ खान को गिरफ्तार किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से अलगाववादी ताकतों से संयुक्त रूप से लड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से मात्र 3 दिन पहले कल प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वे अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में आयोग के एक दल ने नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कोहिमा में कई बैठकें की और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। समाचार संध्या के साथ मैं आशुतोष जैन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इंडियन मुजाहिदीन के एक वांछित आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। 15 लाख रुपए के इनामी आरिफ खान उर्फ जुनैद खान नाम के इस आतंकवादी को कल भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। वो दिल्ली जयपुर अहमदाबाद समेत कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए आतिफ अमीन का सहयोगी जुनैद मुठभेड़ में बाल बाल बच निकला था।
जुनैद पर 15 लाख का रिवार्ड है। ये बहुत सारे बॉम्बिंग इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व रहा है। इसके टेररिज्म की हरकतों का आप अंदाजा से लगा सकते हैं कि इसके बॉम्बिंग इंसिडेंट्स में 165 लोग मारे जा चुके हैं और 535 लोग घायल हुए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पे बनवासा एक जगह है, बनवासा बॉर्डर उत्तराखंड में, यहां इस टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। ये एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर है।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से अलगाववादी ताकतों से संयुक्त रूप से लड़ने का आह्वान किया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक शक्तिशाली देश बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत की मंशा दूसरे देशों के लोगों को डराने की नहीं है। श्री सिंह ने ये बात आज इंडिया गेट से रथ यात्रा का शुभारंभ करते हुए कही। यात्रा के दौरान मार्च में दिल्ली में एक सप्ताह तक चलने वाले वैदिक यज्ञ के लिए मिट्टी और जल एकत्रित किया जाएगा।
यह रथ यात्रा जी निकाली जा रही है तो बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा कोई सरकार बनाने के लिए अथवा किसी सरकार को बिगाड़ने के लिए नहीं निकाली जा रही है। यह रथ यात्रा जी निकाली जा रही है तो राष्ट्र निर्माण के लिए यह रथ यात्रा निकाली जा रही है।
गृहमंत्री ने कहा कि भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है और सभी लोगों को देश की इस संस्कृति को बरकरार रखने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक देश को एक नव भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से मात्र 3 दिन पहले कल प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वे अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी करेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए डाक द्वारा मतदान का आज अंतिम दिन था। इस बीच राज्य में प्रचार जोर पकड़ने लगा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दक्षिणी त्रिपुरा जिले के शांतिक बाजार और पश्चिमी त्रिपुरा जिले के अगरतला में चुनावी रैलियां करेंगे।
भाजपा के चुनाव प्रभारी और आसाम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बागपाशा और खोवाई निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां करते हुए कहा कि वाम मोर्चा सरकार पिछले 25 सालों से राज्य में शासन कर रही है लेकिन राज्य के आम लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आया है। तो दूसरी तरफ कैलाश शहर में रैली को संबोधित करते हुए CPIM के नेता बृंदा करात ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हित में नहीं है। अगरतला में मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि राज्य में कोई विकास हुआ नहीं है और त्रिपुरा में बदलाव की जरूरत है। निशित जोशी, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत ने आज कोहिमा में योजनाबद्ध मतदाता शिक्षा और मतदाता भागीदारी स्वीप पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोग के सदस्यों ने स्वीप पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। बाद में अधिकारियों के दल ने विभिन्न पार्टियों, निर्वाचन अधिकारियों और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की। निर्वाचन आयोग के दल ने राजनीतिक पार्टियों और अधिकारियों की विभिन्न कठिनाइयों को सुना और उन्हें आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में बताया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का दल आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य तथा केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ कल बैठक करेगा। ये दल राज्य सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगा। भाजपा और एनडीपीपी के गठबंधन ने नागालैंड में आज से पार्टी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गठबंधन की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू, लोकसभा सांसद नेफ्यू रियो और नागालैंड भाजपा इकाई के अध्यक्ष बिसा सोली लुहंगू ने आज मोन टाउन में चुनाव प्रचार में भाग लिया।
चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री किरेन रिजिजू ने लोगों से राजनीति को धर्म से न जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित कर दिया ताकि पूर्वोत्तर राज्यों की विकासात्मक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि नागालैंड को एक सक्षम नेता की जरूरत है, इसलिए पार्टी ने एनडीपीपी के साथ गठबंधन किया और श्री रियो को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। एनपीएफ उम्मीदवार और राज्य के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने कहा कि उन्हें चुनाव में बड़ी जीत का भरोसा है। कोहिमा से अनिला जमीर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ईटानगर में एक समारोह में दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसमें एक ऑडिटोरियम, कई सम्मेलन कक्ष और एक प्रदर्शनी हॉल है। प्रधानमंत्री राज्य के सिविल सचिवालय भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव तैयारियों पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड इंद्रप्रस्थ चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज?
भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहे हैं।
किचन में क्यों, कोमल बिटिया का है?
कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी।
मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में। अजय जी ये क्या कर रखा है?
कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है।
बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
छह महीने का होकर भी अगर आपका बच्चा न सुन पाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद आपका बच्चा कभी भी न सुन पाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों, खासतौर से आम आदमी को न्याय दिलाने में देरी से बचने का आह्वान किया है। आज कानपुर में वीएसएसडी कॉलेज में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली महंगी होती जा रही है और न्याय में देरी से सबसे अधिक आम आदमी प्रभावित होते हैं। उन्होंने आम लोगों के हित में उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषा में सुनवाई करने और फैसला सुनाने पर बल दिया। राष्ट्रपति ने हिंदी में कामकाज शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सराहना की। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि किसान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय और खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को नई तकनीक और तौर तरीके विकसित करना चाहिए।
कृषि विकास हेतु इंद्रधनुष क्रांति देश के किसानों के लाभ की एक नई पहल है। अनाज, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, रेशम कीट पालन को कृषि के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही किसान को उसकी उपज की उचित कीमत दिलाने में मार्केटिंग एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग की भूमिका को प्रोत्साहन दिए जाने की भी जरूरत है।
सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का नेपाल का 3 दिवसीय दौरा आज संपन्न हो गया है। जनरल रावत ने आज सवेरे नेपाल में राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वदेश रवाना होने से पहले वे वहां प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से भी मिले।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान जनरल रावत ने भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री देउबा को नेपाल में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की ताजा जानकारी भी दी। जनरल रावत नेपाली एकता के 250 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल शाम आयोजित नेपाली सेना दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नेपाली सेना युद्ध स्मारक पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। राजकुमार, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
यार, आधार में पता बदलवाना है, कहाँ जाऊँ?
अरे पास के बैंक में चला जा।
बैंक में आधार?
हाँ, अब आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा कई बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध है। बैंक शाखाओं की सूची देखने के लिए uidai.gov.in पर जाएं या 1947 पर कॉल करें। और हाँ, आधार में मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। इससे आधार ओटीपी के द्वारा आप अपना बैंक खाता या मोबाइल नंबर घर बैठे वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा आधार, मेरी पहचान।
ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। शनिवार को उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया जाएगा। वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका और उसके यूरोप के सहयोगियों ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी सूची में रखने का प्रस्ताव पेश किया है। पाकिस्तान के कार्यकारी वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इस्लामाबाद में बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान को वित्तीय कार्य दल की अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन और आतंकवादियों को वित्त पोषण करने वालों की सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया। बाद में फ्रांस और जर्मनी ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसे रविवार से पेरिस में होने वाली बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। श्रीलंका में दोनों प्रमुख पार्टियों द्वारा अपनी सरकार बनाने के दावे से उत्पन्न राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना शुक्रवार को एक विशेष वक्तव्य जारी करेंगे। राष्ट्रपति का समर्थन कर रहे श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के सांसदों के एक वर्ग ने आज सरकार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने यातायात मंत्री निमल श्रीपाला को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आह्वान करते हुए संसद में बहुमत साबित करने का दावा किया। खबर है कि राष्ट्रपति ने उनसे अपनी संख्या के साथ बहुमत साबित करने को कहा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 145 अंक घटकर 34,156 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 39 अंक कम होकर 10,501 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया आज 22 पैसे मजबूत होकर ₹64.09 दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 33 सेंट घटकर $62.39 प्रति बैरल पर आ गई।
प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि सामाजिक मुद्दों के खिलाफ लड़ने के लिए साहित्य एक सशक्त माध्यम है। मीडिया और साहित्य पर नई दिल्ली में एक संगोष्ठी में डॉ सूर्य प्रकाश ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने कहा है कि पारंपरिक कला किसी भी क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और इसके संरक्षण में युवाओं की बड़ी भूमिका है। राज्यपाल ने आज गोवा में लोक संगीत और नृत्य महोत्सव लोकरंग के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। देश के कुछ भागों में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कई जगह ये पर्व कल मनाया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महाशिवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने 2008 में दिल्ली के बटला हाउस मुठभेड़ में वांछित इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिफ खान को गिरफ्तार किया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से अलगाववादी ताकतों से संयुक्त रूप से लड़ने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से मात्र 3 दिन पहले कल प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वे अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में आयोग के एक दल ने नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कोहिमा में कई बैठकें की हैं। और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।